नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक पेश किए। विधेयकों पर चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महिला शक्ति को नीति निर्माण में उचित प्रतिनिधित्व देना समय की मांग। विपक्षी दलों से राजनीतिक रंग न देने की अपील की। हरियाणा और चंडीगढ़ में स्वजनगणना शुरू हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों से स्वगणना में भाग लेने का आह्वान किया। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र, अम्बाला और रोहतक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में पदयात्राएं निकाली गईं और कांग्रेस ने हरियाणा के 5 विधायकों को राज्यसभा प्रत्याशी के विरुद्ध मतदान करने के आरोप में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 पेश किए। गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयकों को पेश करते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 महिलाओं के लिए समानता सुनिश्चित करेगा। मंत्री ने कहा कि देशभर में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का एक समान और कानूनी रूप से सुसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा में वर्तमान संख्या से 50% सीटों की वृद्धि करना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद लोकसभा में सदस्यों की संख्या 815 हो जाएगी। इनमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो मौजूदा आवंटन के अतिरिक्त हैं।
ये अमृतकाल की बेला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। 2047 में जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर विकसित भारत का उत्सव मनाया जाएगा, तब उसमें महिलाओं की भूमिका अग्रणी रहने वाली है। इसलिए मैं आज इस सदन के समक्ष सभी माननीय सदस्यों से ये निवेदन करता हूं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास कर हमारी मातृशक्ति को उनका अधिकार दिलाने के लिए अपना योगदान दें।
आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की 50% आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और नीति निर्माण में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देना समय की मांग है। श्री मोदी आज लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संवैधानिक संशोधन से संबंधित 3 महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से इस ऐतिहासिक विधेयक को राजनीतिक रंग न देने की अपील की।
आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा, ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे।
श्री मोदी ने कहा कि यह सभी के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए लाभकारी होगा। उन्होंने कहा, विरोध करने वालों को भविष्य में इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश की दिशा और भविष्य तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं है। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में सात अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है।
लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण का समर्थन करती है। उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विधेयक को जल्दबाजी में लाने पर सवाल उठाया। श्री यादव ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक नवीनतम जनगणना पूरी होने के बाद ही पेश किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जनगणना का काम शुरू हो चुका है।
सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है। सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है।
भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक महिलाओं की क्षमताओं को मान्यता देने और उन्हें सम्मानित करने की दिशा में एक कदम है, इसलिए आज का दिन देशभर की महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। संसद भवन के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने विपक्ष से विधेयक का समर्थन करने का आह्वान किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा में आज से स्व जनगणना शुरू हो गई है। यह 30 अप्रैल तक चलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों से जनगणना में सहयोग की अपील की है ताकि सही आंकड़े सामने आ सकें।
आज जनगणना का प्रारंभ हुआ है। साथियों, यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि हमारे विकसित हरियाणा विकसित भारत की आधारशिला है। जनगणना के महत्व को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जनगणना हमारा विकास की बात कही है। हमारी जनगणना हमारा विकास यह एक संकल्प है जो हर नागरिक की भागीदार से वो साकार होगा। हर नागरिक को उसमें अपना सहयोग देना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय देश में स्वतंत्रता के बाद 8वीं और हरियाणा के गठन के बाद यह 6ठी जनगणना हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वगणना डिजिटल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नागरिकों को समय अपनी जानकारी दर्ज कराने का अधिकार और सुविधा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना हर तरह के विकास का मजबूत आधार है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी जनगणना 2027 के लिए स्वगणना शुरू हो गई है। आज चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद ने स्वगणना के तहत ऑनलाइन जनगणना पोर्टल के माध्यम अपनी जानकारी भरी। इस प्रक्रिया में जनगणना निदेशक डॉ. नवजोत खोसा तथा सह प्रधान जनगणना अधिकारी द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। मुख्य सचिव ने प्रभावी योजना निर्माण एवं नीतिगत निर्णयों के लिए सटीक आंकड़ों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने नागरिकों से समय सीमा के भीतर अपनी स्वगणना पूर्ण करने का आह्वान किया। आज कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित पुरुषोत्तमपुरा बाग से अर्जुन चौक तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में एक पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में हरियाणा बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी, पूर्व मंत्री कमलेश ठांडा और महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने भी भाग लिया। इस अवसर पर श्रीमती सुमन सैनी ने कहा,
नारी शक्ति अधिनियम पद यात्रा के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आधी आबादी की तरफ से हरियाणा की महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि महिलाओं की इतनी चिंता उन्होंने की और जो स्पेशल सेशन 16-17-18 का उन्होंने रखा महिलाओं के लिए और नारी शक्ति अधिनियम 2023 को अब लागू करने जा रहे हैं। वो महिला को पंचायत विधानसभा से तक लेके जा रहे हैं।
उन्होंने कहा, महिला आरक्षण बिल लागू होना एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा साबित कर रही हैं और अब उन्हें नीति निर्माण में भी समान भागीदारी मिलनी चाहिए। अम्बाला में आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिला मोर्चा द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली की शुरुआत जनस्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने हरी झंडी दिखाकर की। रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस अधिनियम के जरिए महिलाओं को उनका हक मिला है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आज भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की ओर से प्रदेश सचिव रेणु डाबला की अगुवाई में रोहतक में पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा के माध्यम से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया गया और नागरिकों को महिला सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों से अवगत करवाया गया। कांग्रेस ने हरियाणा के 5 विधायकों को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है, जिन पर राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध मतदान करने का आरोप है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष राम नरेंद्र सिंह ने कहा कि नारायणगढ़ से विधायक श्रीमती शैली चौधरी, सढौरा से श्रीमती रेणु बल, रतिया से जरनैल सिंह, पुरहाना से मोहम्मद इलियास एवं हतीन से विधायक मोहम्मद इजराइल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक पेश किए। विधेयकों पर चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महिला शक्ति को नीति निर्माण में उचित प्रतिनिधित्व देना समय की मांग। विपक्षी दलों से राजनीतिक रंग न देने की अपील की। हरियाणा और चंडीगढ़ में स्व जनगणना शुरू हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों से स्वगणना में भाग लेने का आह्वान किया। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र, अम्बाला और रोहतक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में पदयात्राएं निकाली गईं और कांग्रेस ने हरियाणा के 5 विधायकों को राज्यसभा प्रत्याशी के विरुद्ध मतदान करने के आरोप में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।